ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम पुराण के सातवें स्कंद के पहले अध्याय के समदर्शी भगवान 44 से लेकर 46 तक पढ़ेंगे, और क्योंकि 44 और 45 में कोई प्रपट नहीं है तो 46 को हम लोग रिसाइट करेंगे। तावत्र क्षत्रियो जातो मात्रश्वस्त्रात्रम आत्मजोतव तावत्र क्षत्रियो जातो मात्र स्वस्त्र आत्मजो तव अधुना शाप निर्मुक्तो कृष्ण चक्र हत अनहसौ। तो दोनों अत्र यहां तीसरे जन्म में क्षत्रियो क्षत्रिय अथवा राजा जातो उत्पन्न मात्र स्वस्त आत्मजो मौसी के पुत्र तब तुम्हारी अधुना अब शाप निर्मुक्तो शाप से मुक्त कृष्ण चक्र कृष्ण के चक्र द्वारा हत विनष्ट अनहसो जिसके पाप। ट्रांसलेशन अनुवाद एवं तात्पर्य भाई हिज डिवाइन गेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। हम लोग 44 45 46 का ट्रांसलेशन और अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। तत्पश्चात भगवान विष्णु के ये दोनों द्वारपाल जय तथा विजय रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में विश्रवा द्वारा केशनी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे ब्रह्मांड के समस्त लोगों को अत्यधिक कष्टकारी थे। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, जय तथा विजय को ब्राह्मणों के शाप से मुक्त कराने के लिए रावण तथा कुंभकर्ण का वध करने के लिए भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। अच्छा होगा कि तुम भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में मार्कंडे से सुनो। तीसरे जन्म में वही जय विजय जय तथा विजय क्षत्रियो के कुल में तुम्हारी मौसी के पुत्रों के रूप में तुम्हारे मौसेरे भाई बने हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनका वध अपने चक्र से किया है, अतः उनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं और अब वे शाप मुक्त हैं। तात्पर्य अपने अंतिम जन्म में जय तथा विजय राक्षस नहीं बने, अपितु उन्होंने सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में जन्म लिया जिसका संबंध कृष्ण के परिवार से था। वे भगवान कृष्ण के प्रथम मौसेरे भाई बने और लगभग उन्हीं के समान स्तर पर थे। भगवान ने स्वयं अपने चक्र द्वारा उन्हें मारकर ब्राह्मणों के श्राप से बचे हुए पापों को भी नष्ट कर दिया। नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को बताया कि शिशुपाल भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके उनके पार्षद के रूप में पुनः वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुआ। इस घटना को सबों ने देखा। ओम अज्ञान तिमिरंधास्य ज्ञानंजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुत पादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा ललित रघुनाथं वितंतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भागवतम के सातवें स्कंद में पहले अध्याय में जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें समदर्शी भगवान, भगवान सबके लिए एक है, एक समान है। ये भ्रम हो सकता है, ये संशय हो सकता था कि भगवान दैत्यों को मारते हैं और अपने भक्तों को प्रतिणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम। ये हमारी फिलॉसफी है। भगवान ने खुद बताया चौथे अध्याय में भगवद्गीता में कि मैं आता हूँ सातवें आठवें श्लोक में कि जन परित्राणाय साधुना, साधुओं को मैं आनंद देने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतम दुष्टों को मारने के लिए। तो भगवान यदाई दाई धर्म से बार बार आते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, और आके तो लोग कहते हैं कि भाई आप पार्शल हैं, क्योंकि ये कहीं बार आया कि जो भागवतम का परिभाष सूत्र श्लोक है एत चांस कलापुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। ये भागवतम का बहुत आधारभूत श्लोक है, पूरी भागवतम इसी के ऊपर टिकी हुई है और चली है और इसी के ऊपर व्याख्या करती है। तो भागवतम में इस श्लोक में बताया कि इंद्रारी इंद्र के अरी इंद्र के दुश्मन व्याकुलम उनको व्याकुल करने के लिए, बेचैन करने के लिए, उनको पेन देने के लिए, उनको मारने के लिए भगवान आते हैं। एते च हम सकला पुंसा जितना ये जो भगवान के जितने समुद्र में लहरें हैं इतने भगवान के अवतार हैं और उसके लिए भक्तों के लिए वो आते हैं और खास तौर से इंद्र के। अब कोई कहने लगे कि भाई इंद्र के दुश्मन, तो इंद्र क्या कोई बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिसके लिए भगवान इतना सबको मारते फिरते हैं इंद्र के पीछे, तो पार्शलिटी हो गई। तो इसके ऊपर यहाँ पे संशय हुआ। तभी जब देखा लोगों ने कि किस तरीके से शिशुपाल को भगवान ने चक्र से मारा और उसके 100 अपराधों को क्षमा किया, और ऐसे अपराध थे जिसमें हर अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जा सकता था, तो भगवान ने कितना टॉलरेट किया, कितने दयालु हैं इस हिसाब से, और उसके बाद में फिर चक्र से उसको मारा। और जब मारा तो उसकी जो आत्मा है निकल के भगवान के शरीर में प्रवेश करी। तो इससे लोगों को लगा कि भगवान ने ऐसे राक्षस जैसे पर्सनैलिटी को जिसने भगवान को इतने बुरी तरीके से भरी सभा में अपमान किया, जैसे अगर किसी को कुछ समझाना हो, किसी को कुछ करेक्ट करना हो, या किसी के साथ में विवाद हो तो आप अकेले में बात करें, और अगर किसी को प्रेज करनी हो तो तारीफ उसकी पब्लिकली करें। ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। जब हम बच्चे को डांटना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं, तो चुपचाप से अकेले में जाके धीरे से बताना चाहिए। ये होम स्कूलिंग का प्रिंसिपल है, और वैसे भी प्रिंसिपल है बच्चों को रेज करने का, कि बच्चों को अकेले में जाके धीरे से डांटना चाहिए, सबके सामने नहीं डांटना चाहिए। अगर सबके सामने डांटेंगे तो वो और उद्दंड होकर और बुरा मान जाएगा, उसे बेइज्जती फील होगी। ये बच्चे के साथ भी और बड़ों के साथ भी है। तो यहां पे अगर जैसे जय विजय को श्राप मिला चार कुमारों से, तो वो जय विजय का उनका रोकना ठीक था कि भाई बच्चे, अब जैसे कोई बच्चा है मंदिर में आए और अल्टर पर चढ़ने की कोशिश करे, चढ़ के सीढ़ी पे और रेलिंग पे, तो फौरन सब लोग भाई कहां इसकी मदर है, कहां इसके पिताजी हैं, और चौकीदार को बुलाओ, इस बच्चे को नीचे उतारो, एक टेंडेंसी आएगी। यही बात वहां पे थी, तो उनका कोई उनके प्रति हार्ट में बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने को रोका। अब इतने में वो, जबकि वो ब्रह्म रियलाइज थे, ब्रह्मवादी थे, उनको ज्ञान था, अच्छे बुरे का ज्ञान था, लेकिन तब भी उन्हें गुस्सा आया। तो ये भगवान की एक लीला है, किस तरह से वहां प्रकरण हुआ, विवाद हुआ, और उसमें उन्होंने श्राप दे दिया। अब भगवान फौरन आए, बोले अरे आप इतने महान भक्त हैं और आपकी सेवा में मतलब मैं क्या कर सकता हूं, कैसे ये सब। तो वो जय विजय पैरों पड़ के रोने लगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप तीन जन्म मेरे भक्त के रूप में, या तीन जन्म मेरे दुश्मन के रूप में, या छह जन्म मेरे भक्तों के रूप में ले सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। तब उन्होंने तीन जन्म अपने दुश्मन के, अपने एनिमी के रूप में लिए। तो फिर उनका पहला जन्म हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरा रावण कुंभकर्ण, और तीसरा शिशुपाल दंतवक्र, और चौथा कलयुग में जगाई मदाई का। तो ये इस तरह से उन्होंने जन्म लिए, और हर जन्म में एक अलग कथा हुई। उसमें भगवान मतलब हिरण्यकशिपु ने भगवान नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, और वराह रूप में भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, और रावण कुंभकर्ण को, दोनों को भगवान राम ने मारा, और उसके बाद में यहाँ शिशुपाल दंत वक्र को भगवान कृष्ण ने खुद अपने हाथों से मारा, दोनों भाई। और उसके बाद में अभी, और जन्म पहले दो जन्म तो राक्षस कुल में लिए उन्होंने, तीसरा उन्होंने ये बता रहे हैं यहाँ पे के क्षत्रिय, इसमें जो ये परिवार है, तीसरे जन्म में क्षत्रिय के कुल में तुम्हारी मौसी के, तो युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बता रहे हैं। कृष्ण की तो वो बुआ के लड़के थे, लेकिन जो युधिष्ठिर महाराज है इनकी मौसी के लड़के थे, क्योंकि नारद मुनि युधिष्ठिर को ये सब बातें बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो भगवान की जो कृपा है वो सबके लिए है, भगवान इम्पार्शियल है। जैसे बारिश होती है, बारिश मिट्टी में, खेत में, घास में भी गिरती है, और कॉन्क्रीट के ऊपर भी गिरती है, पेवमेंट के ऊपर भी। तो पेवमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करता, हटा देता है, बह के चली जाती है बारिश, लेकिन मिट्टी उसको सोख लेती है प्रेम से। ऐसी भक्त लोग भगवान की कृपा को मानते हैं, लेना चाहते हैं, रिसेप्टिव हैं। और जीवन में जो भी भक्तों के होता है, कई बार भक्तों के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, बड़ा उहापोह होता है। भक्त लोग भी कहते हैं क्या मिला भक्ति करके, देखो कितने दुख उठा रहे हो। और हम भी अपने आप को कई बार भ्रम में आके कहने लगते हैं भक्तों ने के बाद भी कि हाँ देख लो, मैंने इतनी भक्ति करी, इतनी माला करी, इतनी पूजा करी, मुझे ये सब देखने को मिला लाइफ में। ऐसे बहुत होता है, लेकिन देखो अगर बारीकी से, अगर भक्ति हम नहीं भी करते और आम अभक्त की तरह मेटरिस्टिक लोगों की तरह रहते, तो क्या वो बहुत सुखी है? क्या मेटरिस्टिक लोगों की इलाके में लाइफ में दुख नहीं है? अभी मेरे एक मित्र को पता लगा कि उनकी लड़की 4 साल की हो गई, वो बोलती नहीं थी, तो सबको ये हुआ कि भाई बोलने लगेगी, और 1-2 साल में बच्चे कई बार देर में बोलता है। अब बोलने की उसकी वेट करते बाद चेकअप करवाया तो पता वो बहरी थी, जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता, 4 साल की बच्ची। कितने दुख है इस दुनिया में, कितने दुख है संसार में, अंत नहीं है। लेकिन माला जैसे जन्म और मृत्यु, बर्थ एंड डेथ, बी फॉर बर्थ एंड डी फॉर डेथ, जन्म और मृत्यु के बीच में एक वर्ड है, बी और सी के बीच में, सी बी और डी के बीच में एक शब्द लेटर है सी, सी से मतलब चॉइसेस। इस जन्म और मृत्यु के बीच में जो हम चॉइसेस अपनी जो फ्री विल को, अपनी जो स्वेच्छा को किस तरह से हम यूज करते हैं, जैसे कि बहुत गरीब आदमी था, इतना गरीब था, पहनने को जूते नहीं पहने और कपड़े नहीं, और तभी वो जा रहा था। अब इतना डेस्टिनी, उसका जो प्रारब्ध कर्म था वो ऐसा था कि बहुत गरीब बुरा हाल। अब तभी किसी आदमी ने अपनी जेब में से पैसे निकाल के किसी को दे के, जब पर्स डाला तो जेब में ना जाने के बाहर गिर गया, उन्हें होंगे 10-20-50 हज़ार रुपये। उन्हें तभी वो पर्स उठाया, जाके उनको कहा कि ये साहब आपका पर्स गिर गया। अब वो डेस्टिनी तो उसकी ये थी कि वो बहुत बहुत दुखों में, बहुत गरीबी में पलता, जीता, लेकिन उसने चॉइस, उसने वो स्वेच्छा अपनी फ्री विल को यूज किया, जिसका पर्स उसको दे दो। इतनी सुकृति करते ही उसका भाग्य बदल गया। ऐसे ही हम लोग आज अपनी डेस्टिनी से, प्रारब्ध कर्म से, प्रभुपाद जी ने कहा हम अपनी डेस्टिनी को एक इंच भी हिला नहीं सकते, एक इंच भी। लेकिन अगर हम, जैसे भगवद गीता में 9:22 बताया कि क्या श्लोक है वो, जिसमें वो कहते हैं कि 9:22 9:22 में ये है कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्य अभ्युक्तानां योगक्षेमम्। कि जो मेरा अनन्य भाव से, अनन्य भाव का मतलब हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने सब कुछ दिया, सब कुछ मेरे पास है, दो आंख ना कान हाथ पैर सब कुछ है, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, अनन्य चिंतन, भगवान का ध्यान मुझे करना है बस, और कुछ नहीं। और भगवान को खाली थोड़ी बैठ जाएंगे, भगवान तो ये तक कहते हैं कि मेरे पास, मेरे चरणों में जो चरणामृत लोग पीते हैं उनसे उनका जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन मेरे चरणों में ये जो पावर है, ये मैं भक्तों की सेवा करता हूं इसीलिए आई। भगवान को देखो अपने अंदर कह रहे कि मेरे अंदर अगर ये पावर है कि मेरे चरणों को चरणामृत ले ले और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, ये शक्ति भी मेरे में, क्योंकि मैं भक्तों की सेवा में लगा रहता हूं इसलिए आई। भगवान कितना हम्बल यहां पे पोजीशन ले रहे कि वो तो भगवान कहते हैं कि ये जनाव परिपासित है तेषाम, उन लोगों की नित्य रोज की अभियुक्त नाम जरूरतें, जो भी उनके पास है उसे कोई ले नहीं सकता, और जो उनके पास नहीं है वो मैं देता हूं। भगवान ने गारंटी कर दी इस बात, कह दिया इस बात को साफ साफ। तो यहां पे अब जैसे हम लोग प्रारब्ध कर्म की बात करते हैं, चॉइसेस की बात करते हैं, तो भगवान की सेवा की यहां पे जो बात आई कि जैसे कंस भगवान को याद करते थे एंग्री में, एंग्री मूड में, और भगवान को मारने के लिए, भगवान से डर के, भय भय के कारण, गोपियां अपनी लस्ट डिजायर्स के कारण, लेकिन उनकी लस्ट मैटेरियल लस्ट नहीं थी। अगर हम लोग कई बार कंपेयर करने लगते हैं, बराबरी करने लगते हैं कि गोपियों की लस्ट और हमारी संसार में जो लस्ट है सेम नहीं है। गोपियों की लस्ट है भगवान को प्लेजर देने की, और हमारी लस्ट इस मेटेरियल वर्ल्ड में, हमारा जो काम है इस संसार में अपनी इंद्रियों की तृप्ति, और गोपियों की काम में क्या है भगवान की इंद्रियों की तृप्ति। ये डिफरेंस है, ये फर्क है दोनों में। तो भगवान की इंद्रियों की तृप्ति के लिए गोपियां रात दिन सोचती रहती थी कैसे उनको प्लेजर मिले, कैसे उनको सुख मिले। तो उनका उनका कल्याण, उनकी भक्ति यही थी उनका, इसी के वो भगवान की इंद्रियों की तृप्ति के लिए ये उनको हर वक्त याद करती थी, कोई क्षण ऐसा नहीं जाता था उसके बारे। और वो अपने घर बार को छोड़ के, परिजनों को छोड़ के, डर के मारे कि वो क्या कहेंगी, जटिला कुटिला ये सब लोग उनके लगे रहते थे, तो वो कितना मतलब मुश्किल से भगवान तक पहुंच पाते थे सब लोग, राजा रानी और गोपियां। तो यहां पे अब जैसे लस्टी डिजायर हैं, या सर्विस सेवा के भाव से भगवान का ध्यान किया जा सकता है, या अफेक्शन मतलब भगवान को पेरेंटल, जैसे लड्डू गोपाल की सेवा, लड्डू गोपाल को दूध देना है, लड्डू गोपाल को ये खिलाना है वो, मतलब जनरली जो हम लोग पूजा वूजा करते हैं वो इस तरह के, हे भगवान परम पिता हमें दो, हमें दो, गिव मी डेली ब्रेड, गिव मी दिस, ये मुझे दो, मुझे ये चाहिए, धर्मदेही जन्मदेही, हाई बर्थ हाई पोजिशन सब कुछ ये मांगते रहते हैं। लेकिन भगवान ने लड्डू गोपाल के रूप में अपने आप को स्थापित करके बताया मैं बेबी हूँ यशोदा माई के भाव में, कि भाई सेवा करो, बच्चे को भूख लगी है, बच्चा सोएगा, बच्चा उठेगा, बच्चा जाएगा, उसे कपड़े पहुंच दो, उसके मुंह धुलाना है, तो वो भगवान अपने आप को ऐसे हो जाते हैं कि सेवा करो मेरी, तो वो भाव। अब जैसे कॉपिंग भी, नकल में भी काम हो जाता है कई बार। एक बार क्या हुआ कि ये प्रभुपाद जी के समय की ही बात है, हवाई अमेरिका में एक जगह है, स्टेट है, तो वहां पे वो आइलैंड है, वहां पे इस्कॉन का मंदिर है, प्रभुपाद जी के समय में ही वो खुल गया था। तो वहां अब अमेरिका में जैसे आजकल ये अभी तो टाइम निकल चुका, अक्टूबर के लास्ट दिन में अमेरिका में एक वो मनाते हैं हेलोवीन। हेलोवीन में वो क्या करते हैं, तरह तरह के सांग रच के प्रेत भूत के कपड़े ब्लड ये वो लगा के घूमते हैं लोग, मतलब तरह तरह के रूप रख के, और वो एक वहां पे है बस हेलोवीन एक कल्चर चला रहा है। हेलोवीन में मतलब वो तरह भूत आत्मा इस तरह से करके वो करते रहते हैं, तो उसमें तरह तरह कपड़े पहनते हैं। तो दो लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि आज इन हरे कृष्णा वालों को जरा परेशान किया जाए। तो उन दोनों ने कहीं से बेडशीट खरीद के लाए, सैफरन रंग की या पिंक रंग की जो भी चादर खरीद के लाए, क्योंकि धोती होती तो कहां से लाते, तो चादर स्टोर से खरीद के लाए, चादर को धोती की तरह बांध लपेट के और मंदिर के बाहर हरे कृष्णा करके डांस वांस करके चिढ़ाने लगे डिवोटीज को। लेकिन वो हरे कृष्णा मतलब बोल रहे थे और डांस कर रहे थे। अब डिवोटीज अंदर थे, उन्होंने कोई चिंता नहीं, डिवोटीज क्यों एनवीएस होंगे कि सब नकल भी उतारा, डांस भी कर रहा, कुछ भी कर रहा, जाके प्रसाद भी दे दिया, अब वो चले। थोड़े दिनों बाद उनमें से एक जो है वो मंदिर आया, अब बोला कि भाई मैं, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, मेरी नौकरी छूट गई, और मुझे मालूम है कि आप लोग यहाँ ये सब फ्री प्रसाद वगैरह बांटते हो, तो मुझे, मैं भूखा हूँ। तो डिवोटी ने प्रसाद वगैरह दिया, वो मंदिर में रुक गया, होते होते उसे माला चैंटिंग कर करके वो डिवोटी बन गया। अब कहने को तो वो नकल उतार रहा था कि मजाक बना रहा था भक्तों की, लेकिन वो मजाक भी ऐसे ही गुस्से में भी, जैसे अमेरिका में हमारे वहां मंदिर में एक भक्त तो बाद में बने, तो वो ऐसे ही जैसे इंडियन कांग्रीगेशन होता है, मतलब इंडिया के लोग आते हैं मंदिर में अमेरिका में, तो वो भी आते थे। तो उनको हम लोग जैसे इस्कॉन में हम लोग हैं, प्रभुपाद जी ने ये कहा, प्रभुपाद जी ने वो कहा, प्रभुपाद जी ने ये कहते हैं प्रभुपाद जी को, तो वो हम लोग इस तरह से हैं ओरिएंटेड, क्योंकि तो प्रभुपाद जी के ही है सब कुछ, हमारा तो सब कुछ ही प्रभुपाद जी के लिए है, हमारे तो जवान पे प्रभुपाद जी का नाम रहता है हर सेकंड। तो वो कुछ नाराज से हो गए एक दिन, और ऐसे बोले, क्या प्रभुपाद 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 आप करते हैं, कुछ और भी बोलते हैं। अब प्रभुपाद जी तो कृष्ण से भी ज्यादा मर्जी फूल हैं, उन्होंने वो जो उनका नाम लिया प्रभुपाद जी का 6-7 बार, चाहे गर्मी में लिया चाहे ठंड में लिया, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको भक्ति दे दी। अब उसके बाद वो शांत हो गए, रेगुलरली मंदिर आने लगे, मंदिर में सेवा पकड़ ली, 20 साल निकल गए ऐसी सेवा करते जो कोई नहीं करता। तो प्रभुपाद जी ने कैसी तो भगवान उनके भक्त इस तरह से कृपा कर सकते हैं, तो ये एक ऐसी चीज है। और जैसे कि प्रारब्ध की बात होती है, एक आदमी एक बार जैसे वो सड़क के किनारे लोग बैठे रहते हैं हाथ वात देखने का बोर्ड लगा के, तो उसके बाबूजा, अरे जोशी जी, बाबा जी, बाबा मेरे 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 हाथ को मेरे शनि की दशा, मुझे मेरा हाथ देख के बताओ मैं शनि। तो उसने कहा ऐसा है कि कुछ उपाय करो कि ठीक है, तेरे पास कोई 10-20 रुपए हैं कि नहीं? मेरे पे बिल्कुल नहीं, 10 रुपए है, चल 10 रुपए दे, 10 रुपए भी नहीं, चलो यार 5 रुपए दे दे यार, तू 5 रुपए दे दे, मैं तेरे को बता दूंगा क्या करना, उपाय कर दूंगा तेरा शनि का। मेरे पे 5 रुपए भी नहीं, चल तू यार 1 रुपया दे देना, 1 रुपया मैं तेरे शनि का इलाज कर दूंगा। मैं भाई 1 रुपया भी नहीं, कि तू जा तू यहां से चला जा, शनि तेरा क्या कर लेगा। तो पॉइंट कहने का यह है कि कई बार ऐसा कर्म होता है, ऐसा भाग्य होता है, तो ये बर्थ और डेथ के बीच में इस तरह की चीजें होती हैं। अब यहां पे जो भगवान का कंपैशन है, भगवान की जो दया है, कृपा है, उसका उदाहरण है शिशुपाल। 100 बार भगवान को ब्लास्फेम किया और उसके बाद भी भगवान ने उसको वापिस, और इसके लिए जब लोगों ने संशय किया तो उन्होंने फिर बता दिया युधिष्ठिर महाराज को, नारद मुनि ने, कि भाई बैकग्राउंड में जाके देखो, पीछे जाके देखो कि कितना ये तो डेडिकेटेड भक्त है भगवान के, तो ये तो जान ही था। तो सायुज्य और उसके बाद में फिर ट्रांसफर टू बैकुंठ, बैक अगेन टू दैट सेवा, उसी सेवा में वापस पहुंचा दिया। तो ये भगवान का जो कंपैशन है, जैसे कि काल कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु के साथ थे और वो किसी गलत संगत में पड़ गए। उनके साथ होने के बाद भगवान कृष्ण खुद चैतन्य महाप्रभु और उनका एसोसिएट, उनका सर्वेंट, वो माया में चला गया। इवन जो चोर उचक्के थे उनके साथ में निकल गया। अब बाद में वो वहां से धोखा खा के, ठोकर खा के वापस जब आया तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नो आई डोंट, मैं बात नहीं करना चाहता, इनको बाहर जाओ। जो बाहर निकाल दिया तो फिर धीरे से भक्तों को कहा कि भाई ऐसा है कि ये मैंने डांट लगा दी, निकाल दिया, लेकिन इसको तुम प्रसाद वगैरह और सेवा में थोड़ा जोड़ के रखना, तो इसको ऐसा मत करना कि ये मतलब बिल्कुल। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऊपर से डांट लगाई लेकिन अंदर उनके कंपैशन, कृपा थी, दया थी, जो उन्होंने कहा कि नहीं इसको जोड़ के रखो। यही भक्ति सिद्धांत जी के समय पे भी ऐसा एक बार हुआ, किसी भक्त में ऐसे कुछ चीजें हुई तो उन्होंने फिर वैसे तो कहा नहीं मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, आप जाइए, और फिर लेकिन भक्तों को कहा कि नहीं इनको थोड़ा भक्त सेवा वगैरह दो, साथ में लगाओ। तो ये कंपैशन है और भगवान जो है वो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। और जैसे कि शिला प्रभुपाद एक बार जर्मनी में थे तो अपने रूम से जब वो निकल के आए तो देखा एक भक्त बाहर बरामदे में बैठा हुआ माला कर रहा था या बुक पढ़ रहा था कुछ भी, और अंदर कमरे का पंखा और लाइट चल रही थी। तो प्रभुपाद जी ने उसको कहा आप यहां बैठे हुए हो और अंदर लाइट और पंखा चल रहा है, तुम किसी काम के नहीं, तुम्हें इतना भी नहीं। अब इतनी बात को वो सुन के प्रभुपाद जी और मतलब इस्कॉन फाउंडर आचार्य और वो ऐसी बात कह दे तो कितना दुख। अब वो दुख के मारे बहुत परेशान हुआ, रात भर सोचा, सामान को पैक कर लिया। और पैक करने के बाद जब प्रभुपाद जी को पता चला कि वो सामान पैक कर लिया, प्रभुपाद जी ने उसको रूम में बुलाया, कहा हाथ पकड़ के, प्रभुपाद जी ने उसका हाथ पकड़ के और प्रभुपाद जी की आंख से एक आंसू गिरा। और प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे तुम्हें करेक्शन, तुम्हें सही करना है और इसके लिए मुझे तुम्हें चेस्टाइज, कई बार डांट लगानी पड़ती है, लेकिन मेरे हार्ट में कुछ नहीं है, मेरे हार्ट में वही प्रेम और दया और कृपा तुम्हारे लिए है जो सबके लिए है, तो तुम छोड़ के मत जाओ। तो प्रभुपाद जी ने उसको रोक लिया क्योंकि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त, डांट लगाई, प्रभुपाद जी कई बार बहुत गुस्सा हो जाते थे किसी बात पे और दो मिनट बाद हंसने लगते थे। अगर गुस्सा हो और तीन दिन तक गुस्सा ही रहे तब है गुस्सा, तब वो खराब वाला गुस्सा है, लेकिन अच्छे वाला गुस्सा क्या है, अभी डांट लगाई, एक करेक्शन कर दी, फिर दो मिनट बाद आराम से बात कर ली। तो उनके अपनी ईगो, अपना कोई उनका एजेंडा नहीं कि मैं इनको नीचे उतारूं, ऊपर चढ़ाऊं, ना ये चीज गलत है, ऐसे ऐसे करूं, समझा दिया, समझ गया। तो ये जो कंपैशन है, ये चीज, ये असली चीज है जिसके, अब यहां पे जैसे कि कई बार ऐसा होता है, जयपताका महाराज ने अपने अपनी जो एक्टिविटीज इस्कॉन की थी उसमें बता रहे थे एक बार के, बल्कि कोई और भक्त बता रहे थे महाराज के बारे में कि महाराज कलकत्ता में टेम्पल प्रेसिडेंट थे और वहां तमाल कृष्ण महाराज जीबीसी थे। अब वो आए इंस्पेक्शन मंदिर का, जैसे होता है इन जनरल के, भाई वो कुछ बताएंगे करेंगे, तो देखा उन्होंने कुछ होंगी वहां पे चीजें जो सही नहीं होंगी, जो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं लगी होंगी महाराज को, तो उन्होंने कहा भाई आप ये सब नहीं चला पा रहे हैं और उनको टेम्पल प्रेसिडेंट हटा दिए। और महाराज ठीक है, और उसके बाद में फिर थोड़े दिनों बाद पता लगा कि वहां पे कोई संभाल ही नहीं पाया, तो फिर महाराज को वापस उसी पोजीशन में कर दिया गया। और फिर तमाल कृष्ण महाराज आए एक दो साल बाद, कुछ है देखा करा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम चला नहीं पा रहे, उनको फिर हटा दिया। और फिर वहां जब कोई नहीं मिला तो दो तीन बार, लेकिन कभी ऑफेंस नहीं लिया ना, तो तमाल कृष्ण महाराज के हार्ट में कोई बात थी, उनके कहते कि भगवान की सेवा, मंदिर बढ़िया चलना चाहिए, ना ही उनमें कोई ईगो थी महाराज में, जब तक महाराज में कि मैं, मुझे हटा दिया मैं देख लूंगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये कितनी इन तभी आज तमाल कृष्ण महाराज भगवत धाम को प्राप्त हुए। और जयप्रदा का स्वामी महाराज सब लोग जानते ही हैं कि कितने वो अपने ट्रांसेंडेंटल हैं कि उनको इतना डिजीज बॉडी है, उसके बाद भी उनका एंथुजियाज्म, उनका भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास कभी कम नहीं हुआ, कभी विश्वास कम नहीं हुआ। तो यहां पे कि जैसे उनके सारे पाप नष्ट हो चुके क्योंकि भगवान ने चक्र से उनका शिशुपाल का वध कर दिया। तो मारक सो हारक नहीं, उद्धारक श्रीनाथ। भगवान जो है, जो हमें कष्ट मिलते हैं, जो है ना भागवतम में 10:14:8 में फेमस श्लोक है, तत्तेनुकंपा शुष्मिक्ष्य मानु भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुरभिर विदधान नमस्ते जीवेद्य मुक्ति पदे से दाय भाग। दाय भाग का मतलब है कि राइटफुल क्लेम। अगर कोई तत्तेनुकंपा, अगर भगवान जब मुझे कोई कष्ट, मुझे कोई डिफिकल्टी, मुझे कोई परेशानी जिंदगी में आए, तो मैं उसे भगवान की अनुकंपा मानता हूं। अनुकंपा कैसे मान सकता हूं? तत्तेनुकंपा, अनुकंपा मतलब दया कृपा, अनुकंपा कि मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे क्या डेस्टिन था, मैं क्या क्या दुख मुझे मिलने थे, मेरा पैर कटना था आज और मेरे अंगूठे में कट लग के काम हो गए, तो घटा दिया भगवान ने, इंटेंसिटी को कम कर दिया। क्योंकि अगर ये सब भगवान नहीं करते और इस माला में, इस प्रोसेस में ज्ञान नहीं होती तो कौन करता। ब्रह्मा ने भी ब्रह्म संहिता में कहा, यस्तु इंद्रिय अथवेंद्रिय इंद्र गोपा, के तुम चाहे गोबर में रहने वाले कीड़े इंद्र गोपा हो, चाहे स्वर्ग के राजा इंद्र हो, कर्माणु रूपम अभी, अपने कर्म का फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम कर्म के फल से बच नहीं सकते। तुमने अगर कोई गलत काम, बुरा काम किया है, परिणाम आके रहेगा, कोई चीज दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। कर्माणि निर्दयति किंतु च भक्ति भाजान। ब्रह्मा ने कहा कि अगर कोई भक्ति भजन में लगा हुआ है तो उसके कर्मों के रिएक्शन को उस हरे कृष्ण महामंत्र की, जो ये यज्ञ है, उसकी अग्नि में वो जल के राख हो जाएंगे। निर्दयति, कर्माणि निर्दयति, तो ये पावर जो हरि नाम में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान से यही मांगना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी स्थिति हो, भक्तों का साथ नहीं छूटे और ये हरि का नाम नहीं छूटे। ये दो चीजें पकड़ के रखनी है किसी भी कीमत पे, कितना भी अच्छा बुरा हो, कितनी भी गालियां पड़े, कितना भी कोई हमें ऐसी गलती के लिए भी डांट दे जो हमने नहीं की, बुरा लग सकता है, लेकिन हमें बुरा नहीं मानना। हमें अपने भक्तों के, क्योंकि जैसे वो होता है ना पॉक्यूपाइन, पॉक्यूपाइन में क्या होता है कि पॉक्यूपाइन में बड़े पोक निकले हुए होते हैं, तो हम लोग भक्तों के भी हमारे अंदर पोक निकले हुए हैं, तो जब हम दूसरे भक्त के पास आते हैं उसके भी पोक निकला हुआ है, हमारे भी दोनों एक दूसरे पोक करते हैं। तो पॉक्यूपाइन अगर जब उनको एक दूसरे के पोक लगते हैं तो अलग अलग चले जाते हैं और ठंड में रात में मर जाते हैं, और जो साथ में बैठे रहते हैं वो एक दूसरे की गर्मी से बचे रहते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि इस्कॉन का एक बैग है और उसके अंदर बहुत सारे पत्थर हैं और वो उसमें नुकीले नुकीले एज बनी हुई है, कोने बने हुए हैं, और वो बैग हिलता रहता है, सेवा चलती रहती है, और चलते 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 5-10-20 साल में वो सारे के सारे गोल चमकते हुए स्मूथ बढ़िया मार्बल कंचे जैसे बन जाते हैं कांच का। क्यों? क्योंकि सेवा में लगे हुए हैं। जितने भी अपराध, जितने भी वाइसेस, बैड चीजें मेरे अंदर हैं, वो साथ में सेवा कर करके धीरे 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 वो सब चीजें हट जाती हैं। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा, सूत शिक्षा में भागवतम में Canto 1 Chapter 2 Text 17 में सूत गोस्वामी ने 4-5 श्लोक कहे, सारा का सारा, कैंटो वन का चैप्टर टू बहुत ही डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस, ये बहुत फेमस और बहुत अच्छे श्लोक हैं। तो सूत शिक्षा में सूत गोस्वामी ने कहा, श्रणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तो स्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहसताम। श्रणवताम स्वकथा कृष्ण, अब ये भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के पास टाइम है। जय विजय को श्राप मिला, भगवान ने अवतार लिया, लीलाएं की, उनको भी मालूम था कि हम कौन है, भगवान को भी मालूम था ये कौन है, लेकिन भगवान की फाइटिंग की इच्छा हुई तो किससे फाइट करें, कौन लड़ेगा उनसे, तो अपने भक्त को ही कहते हैं भैया तुम ये लड़ने का रोल कर लो, मुझे ये लीलाएं करनी है। तो भगवान का तो ऐसा मामला है। तो यहां पे भगवान जो है वो अपनी लीलाएं करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो इन लीलाओं को सुनने से, स्वकथा कृष्णा, भगवान की कथा सुनने से क्या होगा, श्रणवताम स्वकथा के पुण्य श्रवण कीर्तना, ऐसे पुण्य इकट्ठे होंगे कि क्या होगा उन पुण्यों से, हृदय तो स्थो ही अभद्राणी। अब अगर हमारे हृदय में अभद्र, अभद्र मतलब इनऑस्पिशियस, अनवांटेड, ऐसी इच्छाएं भरी हुई हैं, ये इच्छाएं कहां से आई हैं, पिछले जन्म के कर्मों के फलों को हमारे वो हृदय पे आके उन इच्छाओं के रूप में धूल की तरह, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण के ऊपर जो धूल जमा हो गई है वो पिछले जन्म के पाप कर्मों की, और वो कैसे जमा हुई, अनवांटेड इनऑस्पिशियस डिजायर्स, जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है, जो काम हमें नहीं करने चाहिए, वो इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, वो आके उन इच्छाओं के रूप में हमारे हार्ट में बैठे। तो ये जो चैंटिंग है, ये जो कीर्तन है, ये जो भगवान की लीलाओं का गुणगान है, इसका प्रभाव क्या होता है, हृदय में जो वो पाप की इच्छाएं हैं, जो पाप इच्छा हैं, जो गलत काम की इच्छाएं हैं हृदय में बैठी हुई जड़ पकड़ के, क्योंकि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा था कि क्या कारण है कि लोग जो है वो पाप की तरफ जाते हैं जबकि उन्हें मालूम है, और फिर प्रायश्चित करते हैं। जैसे कि हर धर्म में इसका अरेंजमेंट है, हिंदू लोग गंगा में स्नान करके आते हैं पाप धोने के लिए, ईसाई लोग चर्च में जाते हैं, वहां पादरी को कुछ परगेटरी मतलब अपने पापों का नाश करने के लिए कुछ डोनेशन देते हैं, पर्ज मतलब खत्म, बटन दबा दिया सारे पापों का नाश, तो वो परगेटरी वहां पे चर्च में जाके देते हैं, और चर्च में जाके वो परगेटरी या हिंदुओं का स्नान वगैरह, इससे क्या होता है कि जो पाप है वो तो धुले हटे, लेकिन पाप का जो बीज हार्ट में है, पाप करने की जो इच्छा हार्ट में बैठी हुई है वो नहीं हटती। तो तभी उन्होंने कहा कि ये कुंजर शौचवम, कुंजर का मतलब हाथी, शौचवम मतलब हाथी का स्नान। हाथी का स्नान कैसा है, जैसे हमारा गंगा स्नान, कि गए हाथी पानी में गया, नहा के बाहर निकला, मिट्टी उठाई फिर फेंक लिया अपने ऊपर, हर सैटरडे में जाके, संडे में जाके चर्च में परगेटरी पे कर दी, पाप धुल गए, फिर से आगे पाप करने शुरू कर दिए, गंगा स्नान में गए वहां पाप धोए, पाप आगे फिर करने लगे। तो ये जो साइकिल है, ये जो चक्र है पाप का, ये हार्ट में जो बीज बैठा हुआ है, कूटम बीजम फलोन्मुखम, जो हमारे पापों का परिणाम है वो इस तरह से हमारे हृदय में बैठा हुआ है, कुछ पाप हमारे फलीभूत हो रहे हैं, कुछ फलीभूत होने वाले हैं, कुछ बीज के रूप में बैठे जो बाद में निकल के आएगा पेड़ पूरा पाप का। तो ये इसका नाश जड़ से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो इस पाप का नाश इस हरे कृष्णा मंत्र से हो सकता है, भक्तों के संग में हो सकता है, भगवान की कथा, क्योंकि भगवान ने भगवद्गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासजित शुणु असंशय, मेरे मैया सक्त, मेरे में आसक्त हो जाओ, मना अपने मन को मेरे में आसक्त करो पार्थ अर्जुन, योगम यून्यम मद आश्रय, मेरे आश्रय में आ जाओ और योग में मेरे साथ जुड़ जाओ। भगवान योग में जुड़ने का मतलब अपने हर कार्य को मुझसे जोड़ दो। कार्य है ना, कि भगवद गीता के तीसरे अध्याय के पांचवें श्लोक में कहा, नहीं कशी क्षणम अपी जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्य दे वैशा कर्मा सर्व प्रकृति जैर गुण, कि तुम एक भी क्षण खाली नहीं बैठ सकते। जिस गुण को लेके तुम पैदा हुए हो, गुडनेस पैशन इग्नोरेंस रजोगुण तमोगुण सत्वगुण में, उसमें आपको कर्म में लगना पड़ेगा। आप ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खाली बैठा, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। करना कुछ, तुम मजबूर हो, विवश हो कार्य करने के लिए। लेकिन फिर भगवद गीता के ही तीसरे अध्याय के नवे श्लोक में बात क्लियर कर दी, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। के कर्म करे बगैर तुम रह नहीं सकते, और अगर तुम यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्रा, अगर तुमने भगवान कृष्णा यज्ञ विष्णु उनके लिए काम नहीं किया, अन्यत्र दिमाग लगा दिया उन्हें छोड़ के, तो क्या होगा? लोको एवं कर्म बंधन, कर्म के बंधन में फंस जाओगे भाई, कर्म का बंधन। और अगर उनके लिए काम करोगे, योगम युंजम मदाश्रया, अपने आप को जोड़ दो भगवान से, अपने हर कर्म को भगवान से कनेक्ट कर दो, इसे योग कहते हैं, तो लोग एवं कर्म अन्य यज्ञ यज्ञार्थात कर्म अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधन तदर्थम कर्म होते हैं मुक्त संग समाज, फिर तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि अकाम विकाम सकाम विकाम अकाम, सकाम अच्छे काम, विकाम बुरे काम, लेकिन दोनों का परिणाम, और परिणाम यह कि यहां आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। तो इस जन्म मरण के चक्र से निकलने के लिए हम लोग अकाम, ऐसा काम जिसमें कोई रिएक्शन ही नहीं। और मजे की बात यह है कि हम लोग खाना बंद नहीं करते, हम लोग जो भी काम हम करते हैं वही सब कुछ करते हैं, जो सांसारिक लोग करते हैं वही काम सारे हम करते हैं, बस सोच का फर्क है। हमारी सोच में कृष्ण है, उनकी सोच में अपनी इंद्र तृप्ति है, यही फर्क है। और देखा जाए तो इंद्रियों की तृप्ति हमारी भी होती है, क्योंकि यद पाद पल्लव विलास विलास प्रलास भक्तिया, मतलब भगवान के भक्त लोग जो हैं वो भगवान के विलास में भगवान को भोग लग रहे हैं, 56 चीजें बन रही है भगवान के लिए, संदेश गुलाब जामुन रसगुल्ला ये सब, और हम लोग उनको बनाते हैं और बाद में वो सारा प्रसाद हमें मिल जाता है। तो वी आर ऑल्सो एंजॉय, हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग के पास भी सब कुछ है। जैसे कि जैसे हम लोग कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो कोई बड़ा आदमी, कोई मिनिस्टर आएगा, तो मिनिस्टर आएगा उसके लिए खाने पीने का इंतजाम है, लेकिन उसका ड्राइवर है, ड्राइवर साहब आप भी आ जाओ, आपके लिए सब लगा हुआ, वही सब चीजें बढ़िया, लेकिन अलग मेज पे, लेकिन सब बढ़िया वही सब चीजें। और वो मिनिस्टर मेक श्योर करते हैं, जो चीफ गेस्ट हैं, कि भाई ये मेरे ड्राइवर को सब खाना वाना हो गया प्रॉपर, ऐसा होता है। तो जब ये एक मेटेरियल आदमी इस तरह से इतना सोच सकता है कि मेरे ड्राइवर ने खाया कि नहीं खाया, तो भगवान सर्वशक्तिमान, जैसे कि प्रभुपाद जी जब इस प्लेनेट पे थे तो अमेरिका के अंदर एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा, जैसे अभी इलेक्शन हो गए निपटे अमेरिका में, तो वहां भी इलेक्शन का टाइम चल रहा था, तो डिवोटी लोग चैतन्य महाप्रभु का पिक्चर, हरे कृष्ण महामंत्र का फोटो लेके कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्ण डांस वांस करके कीर्तन कर रहे थे। तो तभी एक जो प्रेसिडेंट जॉनसन था, जिन्हें कौन था जिस जो कि जीत भी गया था बाद में, तो वो उसका कोई फॉलोअर था, उसका कोई सपोर्टर था, वो उसका बैनर लेके आके वो भी खड़ा हो गया पीछे, और वो भी डांस करने लगा कीर्तन में ऐसे कर करके। तो अगले दिन अखबार में वो फ्रंट पेज पे फोटो छपी, छपी तो हरे कृष्णा वालों के कारण, कि क्या कॉम्बिनेशन है, हम लोग भगवान के लिए डांस कर रहे हैं, वो डांस कर रहा है प्रेसिडेंट को जिताने के लिए। अब वो जीत गया प्रेसिडेंट, अब जैसे ही वो जीत गया, अखबार के मेन नेशनल न्यूज़पेपर के फ्रंट पे वो फोटो, हरे कृष्णा के डिवोटी भी है, वो पीछे वो बैनर लिए खड़ा प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट को पता लगा कि भाई कितना डेडिकेटेड आदमी है, उन्हें पता लगवा अभी कौन था, पता लगा, उसे इसको बुलवाओ यहाँ व्हाइट हाउस में, हम डिनर करेंगे साथ में उसके। तो प्रभुपाद जी देख लो, देख लो कि जब एक तुच्छ छोटा सा ये एक इतना माइन्यूट छोटा सा प्रेसिडेंट इतना ऑब्लाइज फील कर सकता है एक उससे के बैनर लिए खड़ा, तो भगवान तुम्हारे से क्या फील करेंगे, कितना कृपा कितनी मर्सी भगवान तुम्हें देंगे तुम सोच नहीं सकते। सबसे बड़ा तो यही है कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, माम तित्व कौनते या पुनर्जन्म विद्यते, दोबारे में जन्म तुम्हारा होगा नहीं है। तो कितना ये जो भगवान की कृपा है, कितना ये जो इस कीर्तन में कोई भी भक्त जो मंदिर में आ जाता है, कोई भी मनुष्य, कोई भी हमारे परिचित जो मंदिर में आए, भगवान का नाम उन्होंने लिया, हमें उनकी भक्ति के क्रीपर को, पौधे को बहुत बात तक सींचना पड़ता है। हम ऐसे नहीं कर सकते आया पौधा उग गया अपने आप निपटेगा, नो, जिसको हम लाए, जिसको हमने जोड़ा, जिसके साथ में हम हैं, हमें सेवा करनी है उनकी, ताकि वो भक्त बन सकें, ताकि वो अपना प्रोग्राम पूरा कर सकें। कोई छोड़ के जाता है हमें दुख की बात है। चैतन्य महाप्रभु ने, भक्ति विनोद जी ने, भक्ति सिद्धांत जी ने ये सब बताया कि नो, हमें सब भक्तों की केयर करनी है, सब भक्तों के प्रति दया का भाव रखना है, कृपा का भाव रखना है, सेवा का भाव रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो यहां पे यही जो इसमें बताया गया कि किस तरीके से भगवान ने लीला की, जय विजय इस तरह से आए चार बार और उनका इस तरीके से उन्होंने उद्धार किया, और चौथे अवतार में तो चैतन्य महाप्रभु रूप में जब वो जगाई मुदाई को तो उन्होंने मारा नहीं, उनको वहीं की वहीं शुद्ध भक्ति को प्रदान कर दिया, शुद्ध प्रेम अपने प्रति दे दिया उन्होंने। तो ये जैसे कि वृंदावन में जो ये कथाएं हैं भगवान की, ये जो लीलाएं हैं, जैसे कि एक बार ये तोता मैना वगैरह भगवान की लीलाओं में हमेशा जुड़े रहते थे, तो जब भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए तो राधा रानी जिस पेड़ के नीचे बैठ के भगवान कृष्ण के बारे में विरह में सोचती थी, उस पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते थे। वो पेड़ भी राधा रानी की भावनाओं को समझता, फील कर सकता था, इतना इंटेंस उनका था कि वो पेड़ भी फूल पत्ती सब छोड़, फूल फल पत्ती स्प्रिंग के बसंत के मौसम में भी वो सब झड़ जाते थे कि राधा रानी दुखी है तो हमारे फेर पर पत्तों का फायदा क्या है। ये उनका भाव राधा रानी का और उनके और भगवान कृष्ण के भक्तों का, कि वो किस तरह से विरह में, तो तोता मैना जो राधा रानी को देख के बहुत दुखी, क्योंकि वो देखते थे कि जब भगवान की लीला चल रही है, रास लीला चल रही है, तो बहुत खुश होते थे, लेकिन अब जब राधा रानी अकेले बहुत दुखी, तो वो तोता पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और अपने मैना से बोल रहा था कि देखो क्या मैं से देखा नहीं जाता राधा रानी को, ऐसे मैं देख नहीं सकता, मेरे बहुत दुख है। और ये कह के उसकी आंख से एक आंसू टपका नीचे, और नीचे एक कीड़ा था, कीड़े के ऊपर वो आंसू टपका और कीड़े के पंख निकल आए, सीधे वैकुंठ धाम चला गया, क्योंकि भगवान के शुद्ध प्रेम में जो आंसू निकला था उसमें वो नहा गया था। तो ये जो भगवान की अनंत अंतरंग लीलाएं हैं, इनको हमें एज इट इज समझना होगा, और इससे ही हम लोगों का कल्याण होगा। भक्तों का संग, हरि का नाम, ये पकड़ के रखना है, इसको फॉलो करना है, इसको चलाना है, यही हम लोगों की जिंदगी है। और जो योग योगम युनम मदाश्रया, भगवान के साथ यूनाइट होना है, उनके थॉट में यूनाइट होना है, उनके विचारों में यूनाइट होना है, कि भगवान सोचते हैं जिस बड़ा पिताजी बहुत दुखी बैठे हुए हैं कि बड़ा छोटा लड़का मेरा चला गया मुझे छोड़ के, और गलियों में बर्तन मांजता फिर रहा, लोग दुत्कार रहे, उसको मार रहे, उसे काम ले रहे, उसे दो पैसे दे के इतना काम कराते हैं। बड़ा भाई कहता है पिताजी आप चिंता ना करो, आप बैठे रहो, मैं समझा के लेके आता हूँ। वो जाके छोटे भाई कहता है भैया पिताजी रात दिन तेरे बारे में चिंता कर करके परेशान हो चुके, हर वक्त वो रोटी तक नहीं खाते तेरी वजह से, और तू यहाँ ये बर्तन बर्तन मार रहा, पिताजी को छोड़ दे, वहां चल, हलवा बना रखा बढ़िया, रोटी बथुए का पराठा सब चीज बनकर तैयार रखी हुई, सब खाने को मिलेगा, यहाँ क्या बेकार धक्के खा रहा है इसे। तो छोटे भाई को बड़ा भाई लेके आया, पिताजी बहुत खुश, नचतस्मात मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कृतमा, मुझे उस आदमी से ज्यादा कोई प्रिय नहीं है भगवान कह रहे हैं, जो मेरे बारे में दूसरे को बता के भक्ति में लाए, इसी को प्रीचिंग कहते हैं। लोग कहते हैं क्यों बताते हो किसी को, इसलिए बताते हैं कि भगवान का आदेश है, भगवान की इच्छा है कि सब उनकी शरण में आए, सब अपने पाप कर्मों से मुक्त होके शुद्ध होके भगवान के भगवत धाम की प्राप्ति करें, तो यही लाइफ का गोल है। तो हम लोग अब ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मंथ चल रहा है, मैराथन चल रहा है, इसके अंदर यही हमारा प्रयास है कि ज्यादा बुक हम लोग बांट सकें, ज्यादा किताबें हम लोग ज्यादा लोगों को जोड़ सकें। मैं GLA में प्रोफेसर हूँ, तो मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि उन्होंने भगवद गीता पढ़ाने के लिए मुझे अलाउ किया। तो 120 बच्चे एक सेक्शन में हैं, 120 बच्चे दूसरे सेक्शन में हैं, इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता वो अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं और एग्जाम होता है, बाकायदा सब पढ़ाई होती है। तो ये हर आदमी जो जहाँ है वो जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। स्थान है शुद्धिकताम तनवान मनोभिर, जिस स्थान पर तुम हो, गए ठाको बने ठाको सदा हरी बोले ठाको। भक्ति ठाकुर ने कहा कि जहां भी जिस जगह तुम हो, तुम घर ग्रस्त में हो, वानप्रस्थ में हो, ब्रह्मचर्य में हो, सन्यास में हो, जिस भी आश्रम में हो, जिस भी जगह पे हो, वहीं अमाराज्ञा गुरु हो या तारो ही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की जय।